वैदिक ज्ञान राशि के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है छंदशास्त्र। भारतीय दृष्टि से इसका महत्व तो इतना है, इतना व्यापक है कि संपूर्ण शब्द राशि छंदों में आवृत है, आबद्ध है और सुरक्षित है। इसके साथ साथ ये भारतीय ज्ञान का एक विशिष्ट पक्ष है कि इतना छंदो वैभव पूरे विश्व में किसी भाषा के पास नहीं है, किसी साहित्य के पास नहीं है। प्रारंभ होता है ये वैदिक वाङ्मय से और उसके बाद आगे चलते हुए इसके जो लौकिक छंदशास्त्र है उसके अनुसार कोटिशः भेद हैं, करोड़ों छंद वैदिक छंदों के मूल से निस्सृत होकर और इस संपूर्ण संस्कृत साहित्य में व्याप्त हैं और इनकी संख्या परिगणित है। आचार्य नारायण भट्ट ने और अन्य आचार्यों ने इनकी संख्या भी परिगणित कर दी है कि इतने छंद हम बना सकते हैं, सिद्धांततः उतने छंदों की संख्या निश्चित कर दी है। हम बना नहीं पा रहे हैं, उनमें रचना नहीं कर पा रहे हैं, केवल 2,500 छंदों को संस्कृत साहित्य में लक्षित किया गया और उसमें से केवल 150-200 छंदों में रचना हुई, लेकिन लगभग 23 करोड़ से अधिक छंद संस्कृत शास्त्रों में सिद्धांततः निर्धारित हैं। इतना बड़ा वाङ्मय, इतना बड़ा छंदों का वैभव विश्व की किसी भाषा में मुझे तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ। छंदों के विषय में जो गूढ़, जो व्यापक और जो विशिष्ट चिंतन संस्कृत साहित्य में है वो अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। छंदशास्त्र भारतीय वाङ्मय की अद्वितीय विशेषताओं में अन्यतम है। विश्व के किसी भी साहित्य में छंदों का इतना व्यापक और सूक्ष्म अनुशीलन नहीं हुआ है जितना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। विश्व की अन्य भाषाओं में कतिपय गिने चुने छंद ही प्रचलित हैं तथा उनका विस्तार भी सीमित है, परंतु संस्कृत साहित्य का छंदो वैभव इतना विस्तृत है कि इसे स्वतंत्र शास्त्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। संस्कृत साहित्य का आद्य स्रोत तथा मूलाधार वैदिक शब्द राशि है तथा इस अपौरुषेय शब्द राशि को छंद शब्द से व्यवहित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का आध्यात्मिक मूल आधार छंदों में ही सुरक्षित है। परवर्ती संस्कृत कवियों ने अपनी कालजयी रचनाओं में, महाकाव्यों में विविध छंदों से अपने साहित्य को समृद्ध करते हुए छंदो विचिति की आधिभौतिक अपरिहार्यता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार भारतीय मनीषा ने छंदों का आधिदैविक, आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक महत्व अंगीकार किया है। आगम संप्रदाय में तो प्रत्येक वर्ण का छंद निरूपित किया गया है। इस रीति से पूरा वर्ण समामनाय छंदों में आबद्ध है। सुप्रथित वैदिक पुरुष सूक्त में सृष्टि के प्रारंभिक तत्वों के अंतर्गत छंदों के उद्भव का प्रतिपादन किया गया है। छंदांसि जजिरे तस्मात् ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है। मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के रूप में छंदशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई है। छंदों के दार्शनिक स्वरूप का अनुशीलन भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में उपलब्ध है। संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में योगदान की दृष्टि से छंदशास्त्र का अनेक शास्त्रों के प्रति उपकार है। छंदोज्ञान के अभाव में वैदिक कर्मानुष्ठान सफल नहीं होता, अतः कल्पांग एवं धर्मशास्त्र के लिए छंद शास्त्र का विशेष महत्व है। संस्कृत छंदों के सुनियत वर्ण विन्यास के कारण अध्येता को उच्चारण सौष्ठव तथा ध्वनि की शुद्धि सहज प्राप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से वेदांग शिक्षा, व्याकरण तथा उपांग प्रातिशाख्यों का उपकारक छंद शास्त्र है। गांधर्व वेद एवं तदनुगत भारतीय संगीत शास्त्र के लिए तो छंद शास्त्र का सहयोग सर्वातिशायी है। मात्रा, यति एवं पाद नियमों के फलस्वरूप छंदों के द्वारा श्रुति सुखद आनंदानुभूति तथा नाद ब्रह्म के साक्षात्कार का माध्यम छंद शास्त्र ही है। छंद पादौ तु वेदस्य इस वचन के अनुसार छंदस्तत्व वेद पुरुष का गति कारक पादांग है। छंदोरूप मानदंड को लेकर ही वैदिक दर्शन की परिधि निर्धारित हो सकती है। छंदस्तत्व के ज्ञान के बिना वैदिक साहित्य या दर्शन का वास्तविक ज्ञान करना असंभव है। ऋग्वेद में इसके गंभीरता की दृष्टि से ही यह उपदिष्ट है, कश्छंदसाम योगमावेद धीरः। ऋग्वेद दशम मंडल 144वां सूक्त 9वीं ऋचा। समस्त मूल छंदों का तत्तत् देवता सहित निर्देश भी अपौरुषेय वाणी के द्वारा समुपदिष्ट है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 130वें सूक्त की 4थी और 5वीं ऋचा इसका उपदेश करती है। अग्नेर गायत्र्य भवत् सयुग्वोष्णिहया सविता संबभूव अनुष्टुभा सोमम उक्थैर महस्वान बृहस्पतेर बृहती वाचमावत विराण मित्रा वरुणयोरभिश्रीः इंद्रस्य तृष्टुभिः भागो अन्नः विश्वान् देवान् जगत्याविवेश तेन चाकृप्र ऋषयो मनुष्याः। ऋग्वेद में कहा गया है कि छंदस तत्व के यथार्थ ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यद् गायत्रे अधिगायत्रमाहितं त्रैष्टुभाद्वा त्रैष्टुभं निरतक्षत यद्वा जगत् जगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशुः। वाजस्नेय संहिता में भी कहा गया है कि छंदों के सहयोग से ही सृष्टि यज्ञ का अनुष्ठापन हो सकता है। सह छंदस आवृतः 34वें अध्याय का 49वें मंत्र में यह निर्देश है। छंदों के निरूपण की यह परंपरा वेद से प्रारंभ कर अभी तक अविच्छिन्न रूप से आ रही है। शास्त्रांतरों में प्रतिपादित छंदों का जो लौकिक स्वरूप है, उन सभी छंदों का मूल वैदिक छंद ही हैं। वेदार्थ के सहायक षडंगों में छंद शास्त्र का स्थान महत्वपूर्ण है। वेदाध्ययन के लिए यह केवल उपकारक साधन ही नहीं माना जाता, अपितु स्वतंत्र विद्या स्थान भी है। जैसा याज्ञवल्क्य स्मृति में है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानान विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। छंदों का ज्ञान इतना प्राचीन है कि गायत्री से जगती पर्यंत सातों छंदों का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनमें चार चार वर्णों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन अथर्ववेद में है। 8वें कांड के 9वें सूक्त के 19वें मंत्र में है, सप्तच्छंदांसि चतुरुत्तराणि। छंदों के साथ स्तोमों के संबंध की चर्चा भी अथर्ववेद में है। अक्षर गणना के आधार पर छंदों का निर्धारण ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त है। प्रगात छंदों का यज्ञ में प्रयोग भी बहुत प्राचीन है। अग्निचयन में वेद की असंख्य इष्टिकाएँ छंदों के रूप में वर्णित की गई हैं, जिनमें मा, प्रमा, प्रतिमा तथा अस्त्रीवय सहित 12 छंदों का उल्लेख है। माध्यंदिनी संहिता में भी और तैत्तिरीयारण्यक में भी मा, प्रमा, प्रतिमा, समा, विमा और उन्मा ये नाम उपलब्ध हैं। छंदों का कार्य, मुख्य कार्य, मंत्रों का परिमाण बतलाना है। ऋग्वेद में कहा गया है, गायत्रेण प्रतिमिमीते अर्कम, अर्थात गायत्र छंद से प्रत्येक स्तोम को मापा जाता है। ऋग्वेद में 7 छंदों के अक्षरात्मक रूप का भी संकेत है। छंद यज्ञ में देवताओं के सहयोगी हैं। छंदों को देविका, देव्यः तथा देवताओं के देवता भी कहा जाता है। छंदों के द्वारा ही देवताओं ने स्वर्गलोक का अधिगम किया, यह वैदिक निर्देशों में उपलब्ध है। इनका प्रधान कार्य सभी दिशाओं में रक्षा करना है। ये सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तथा शक्ति प्रदान करते हैं। ये असुरों के विरुद्ध देवताओं का पक्ष लेकर उन्हें विजय दिलाते हैं। इन समस्त तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण छंदों का यज्ञ में बहुत महत्व है। यह सब शतपथ ब्राह्मण, तैतृय संहिता, वाजसनेय संहिता इत्यादि में उपदिष्ट है। छंदों के उद्भव के संबंध में यह उल्लेख है कि गायत्री प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुई है, त्रिष्टुप बाहों से और अनुष्टुप चरणों से। छंदों के जो कार्य वैदिक उल्लेखों में निर्दिष्ट हैं उनमें से मुख्य हैं रक्षा, संग्रह, इच्छा पूर्ति, शक्ति प्रदान, उन्नयन, देवताओं की विजय कराना, सृष्टि की उत्पत्ति में सहायता देना तथा देवताओं तक आहुति पहुंचाना। ये सभी उल्लेख तैतृय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में छंदों को विविध देव शक्तियों से संपन्न जानकर इन्हें साध्याः देवाः कहा गया है। जयतीर्थ ने मध्वरचित ऋग्भाष्य की व्याख्या में स्कंद स्वामी के मत का खंडन करते हुए वेदार्थ में छंदोज्ञान का उपयोग माना है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार ऋग का लक्षण है जिसमें अर्थ के अनुरोध से पादव व्यवस्था हो। यत्रार्थ वशेन पादव व्यवस्था सारिक, यह जैमिनी का सूत्र है। इसी में अन्य आचार्यों ने भी पादैश छंदोभिश्च बद्धा ऋचः अनियता अक्षर पादबद्धानि यजूंषि प्रगीता मंत्राः सामानि, यह कात्यायनी सूत्र की सरलावृत्ति में इस प्रकार लक्षण किया गया है। इसी तथ्य को वेंकट माधव और माधव भट्ट ने भी स्वीकार किया है और इसमें संदेह नहीं है कि वेदार्थ बोध में पादव व्यवस्था अत्यंत सहायक होती है। इसीलिए छंदस समेत षडंगों के ज्ञान की आवश्यकता पर इतना अधिक बल दिया गया है कि जो इनके ज्ञान से रहित यज्ञ कराता है या अध्यापन कराता है वह पाप का भागी होता है। मैं यह उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यो हवा अवदितार्षे यच्छोन छंदो दैवत ब्राह्मणेन याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्षति गर्ते वा पतति प्रवामीयते पापीयान भवति। छंद शब्द की निरुक्ति से भी इस शास्त्र का महत्व ज्ञात होता है। छंद शास्त्र की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की जाती है। निरुक्तकार का वचन है छंदांसि छादनात्। यहाँ छंद छदि संवर्ण धातु से निष्पन्न है। इस निर्वचन का मूल भी श्रुतियों में है। क्षीरस्वामी ने अमरकोश की टीका में छंदयति आह्लादयते इति छंद यह व्युत्पत्ति की है और इसके अनुसार छंद शास्त्र में अनेक नाम परंपरा प्रसिद्ध हैं। उनमें से कुछ हैं छंदो विचिति, छंदोमान, छंदसाम लक्षणम, छंदसाम विचय, छंदोनुशासन, छंदो विवृत्ति और वृत्त भी। ब्राह्मण ग्रंथों के उपलब्ध छंद संबंधी विचारों का जो क्रमबद्ध सर्वप्राचीन विवरण ऋक् प्रातिशाख्य के छंद प्रकरण में मिलता है और यह ऋक् प्रातिशाख्य का छंद प्रकरण और ऋक् प्रातिशाख्य कात्यायन कृत ऋक् सर्वानुक्रमणी से प्राचीन है, यह अनेक आचार्यों ने प्रमाणित किया है। छंदों का स्फुट उल्लेख शांखायन श्रौत सूत्र में भी है। ऋक् प्रातिशाख्य के इस प्रकरण से प्रतीत होता है कि इसके पूर्व भी अनेक आचार्यों ने छंदों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। पिंगल छंद सूत्र में निम्नलिखित आचार्यों का नामतः उल्लेख है, उनमें हैं तंडी, क्रौष्टुकी, यास्क, सैतव, काश्यप और मांडव्य। पिंगल छंद सूत्र के टीकाकार यादव प्रकाश ने अपनी टीका के अंत में छंद शास्त्र के आचार्यों की परंपरा इस श्लोक में प्रस्तुत की है। छंदो ज्ञानमिदं भवाद् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्माद् दुश्चवनः ततो सुरगुरुर्मांडव्य नामा ततः मांडव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिंगलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यास्मदाद्यैः क्रमात्। एक दूसरी भी परंपरा का श्लोक है। छंदशास्त्रमिदं पुरा त्रिनयलाल लेभे गुहो नादितः तस्मात् प्राप सनत कुमारक मुनिस्तस्मात् सुराणां गुरुः तस्मात् देवपतिः ततः फणिपतिः तस्माच्च सत्पिंगलः तच्छिष्यैर् बहुभिर् महात्मभिरथो मह्यां प्रतिष्ठापितम्। इन दोनों उल्लेखों से ये सिद्ध होता है कि हमारे आचार्यों ने शिव को छंदशास्त्र का परमाचार्य माना है, प्रवक्ता माना है। इसके अनुसार छंदशास्त्र की प्रवचन परंपरा इस प्रकार ज्ञात होती है, भगवान शिव, तदनंतर बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, मांडव्य, सैतव, यास्क और पिंगल। इन्हीं में एक और परंपरा भी लिखित है, उसके अनुसार शिव, फिर गुह माने कार्तिकेय, सनत कुमार, बृहस्पति, इंद्र और शेष पतंजलि और पिंगल। यह छंदशास्त्र की उपदेशक आचार्यों की परंपरा है। निदान सूत्र में पतंजलि ने भी सात छांदस आचार्यों के मत को इन सांकेतिक पदों के द्वारा उद्धृत किया है, पांचालाहा एके उदाहरंती, बहुरिचाहा, आचक्षते, ब्रुवते, प्रतिजानते इत्यादि। छंदस सूत्र में आठ आचार्य निर्दिष्ट हैं, उपनिदान सूत्र में सात आचार्य संकेतित हैं, यथा ज्योतिष्मतीति पांचालाहा, उरो बृहतीति यास्कः, महाबृहतीत्येके, द्विपदा विस्तार पंक्तिश्च तांडिनः। उपनिदान सूत्र में भी परंपरा का उल्लेख है, उनका श्लोक है, ब्राह्मणात् तांडिनश्चैव पिंगलाच्च महात्मनः, निदानात् उक्तशास्त्राच्च छंदसाम ज्ञानमुद्धृतम्। छंदोनुशासन में जयकीर्ति ने 10 प्राचीन आचार्यों को यति के विषय में स्मरण किया है, वांछन्ति यतिम पिंगल वशिष्ठ कौंडिन्य कपिल कम्बल मुनयः, नेच्छन्ति भरत कोहल मांडव्याश्वतर सैतवाद्या केचित्। हेमचंद्र ने भी छंदोनुशासन में अहीन्द्र, सैतव, भरत, काश्यप, पिंगल, जयदेव, स्वयंभू इत्यादि सात पूर्वाचार्यों के नाम उल्लिखित किए हैं, तथा केचित् कश्चित् अन्यः अन्ये अपरे एके पूर्वाचार्याः माघधाः आम्नायः यदाहुः वृद्धाः संग्रह श्लोकाः इति उपदेशोपनिषच्च इत्यादि सांकेतिक पदों के द्वारा 14 आचार्यों के मत को प्रकट किया है। छंदोमंजरी में गंगादास ने यति विरोध के विषय में श्वेत मांडव्य आदि के मत प्रकाशन के अनंतर अपने गुरु पुरुषोत्तम भट्ट का स्मरण किया है। राजवार्तिककार ने तो एक अन्य छंदशास्त्र परंपरा सूचक उल्लेख किया है, शिव गिरिजा नंदी फणीन्द्र बृहस्पति च्यवन शुक्र मांडव्या सैतव पिंगल गरुड़ प्रमुखा आद्या जयंती गुरुचरणा। इनके अनुसार शिव के बाद, भगवान शिव के बाद सर्वप्रथम छंदशास्त्र के आचार्या हुई भगवती गिरिजा, और उसके बाद ये छंदशास्त्र का विस्तार आगे बढ़ा। चंद्रशेखर भट्ट ने वृत्तमौक्तिक में अपने ग्रंथ रचना के आधार के विषय में 4 आचार्यों एवं यति निरूपण में 8 आचार्यों का नाम उल्लेख किया है। सुवृत्त तिलक में व्यास तथा वागवल्लभ में अगस्त्य भी छांदस आचार्य निर्दिष्ट हैं। विरहांक ने छंदशास्त्र की प्रस्तार प्रक्रिया में वासुकी तथा मांडव्य आचार्यों का विशेष उल्लेख किया है। इसका समन्वय करते हुए पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने छंदोमर्मज्ञ भगवान शिव से प्रारंभ कर आचार्य गार्ग्य पर्यंत चारों युगों के छंद प्रवक्ताओं का पौर्वापर्यक्रम पूर्वक उल्लेख किया है, मैं उसे प्रस्तुत करता हूँ। कृतयुग में शिव, पार्वती, नंदी, गुह, सनत कुमार, बृहस्पति, इंद्र, शुक्र, कपिल। त्रेतायुग में मांडव्य, वशिष्ठ, सैतव, भरत और कोहल। द्वापर में यास्क, रात, क्रौष्टुकी, कौंडिन्य, तांडी, अश्वतर, कम्बल, काश्यप, बाभ्रव्य पांचाल और पतंजलि। और कलियुग के आरंभ में उक्त शास्त्रकार शौनक, पिंगल, कात्यायन, गरुड़ और गार्ग्य। इस प्रकार इन 30 आचार्यों की परंपरा का उल्लेख पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने ग्रंथ में किया है। नंदी शिवभक्त आचार्य थे और ये पार्वती के शिष्य थे, भगवान शिव के गण के रूप में हमारे पुराणों में इनकी मान्यता है, लेकिन ये छंदशास्त्र के विषय में पार्वती के शिष्य थे और बाद में कामसूत्र के आचार्य हुए, ये भी उल्लेख मिलता है। आचार्य शौनक ने ऋक् प्रातिशाख्य में छांदस आचार्य के रूप में यास्क का नाम उल्लेख किया है। पिंगल के पहले छंदस शास्त्र विषयक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलते, किंतु इनके पहले जिन चार आचार्यों द्वारा अपने ग्रंथों में छंदों पर विचार किया गया वे आचार्य भरत, परतंजलि, शौनक एवं कात्यायन हैं। पिंगल के द्वारा छंदस सूत्र में 8 आचार्यों के नाम उल्लेख किए गए हैं, किंतु उनके छंदो ग्रंथ नहीं मिलते। उनके छंदो विषयक मत आचार्य पिंगल ने अपने ग्रंथ में दिए हैं। वैदिक छंदस शास्त्र के विषय में मुख्यतः ऋक् प्रातिशाख्य के 3 पटल, 16 से 18 पटल, ऋक् सर्वानुक्रमणी, निदान सूत्र, यजु सर्वानुक्रम सूत्र, पिंगल छंदस सूत्र, उपनिदान सूत्र, वेंकट माधव कृत ऋगर्थ दीपिका का छंदो भाग और जयदेव कृत जयदेव छंद, ये ग्रंथ प्रायः उपलब्ध होते हैं। अब हम छंद शब्द के अर्थ के संबंध में कुछ विचार करें। छंद स्वरूप के परिशीलन के संदर्भ में प्राचीन काल से 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला है निरुक्त सिद्धांत और दूसरा है वैयाकरण सिद्धांत। निरुक्तकार छंद शब्द की व्युत्पत्ति छाद्यते, छंद्यते व अनेन इस प्रकार करते हैं। वैयाकरणों ने छंद्यते अनेन इस प्रकार व्युत्पत्ति की है। इन दोनों सिद्धांतों में शब्दगत प्रकृति वैशिष्ट्य ही विचार वैभिन्न का मूल है। निरुक्तकारों ने अपौरुषेय वेद शब्द राशि को लक्षित करके छंद शब्द की व्युत्पत्ति की है, किंतु व्याकरणकारों ने लौकिक शब्द संघात के आधार पर छंद शब्द की व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है। वैयाकरणों के सिद्धांत के अनुसार भ्वादिगण में पठित चदि आह्लादे दीप्तौ च परस्मैपदी सेठ धातु से नुम होकर चंद शब्द बनता है। अतः चंदनम चंद्यते अनेन वा इस प्रकार विग्रह करके चंदे रादेश्च छह इस औणादिक सूत्र से असुन प्रत्यय करके आदिवर्ण चकार का छकार होकर छंद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है आह्लादन अथवा प्रकाशन करना। वैयाकरण सिद्धांत को आधार मानकर मेदिनी तथा अमरकोशकार ने भी पद्य और छंद आदि को पर्यायवाची शब्द के रूप में ग्रहण किया है। अमरकोशकार छंद शब्द को अनुष्टुप आदि पद्यार्थक मानते हैं। इसी भांति मेदिनी कोश में पद्यार्थक छंद शब्द वेदवाचक भी है। वहाँ की उक्ति है छंद पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयो हो। महर्षि कात्यायन की मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इस परिभाषा के द्वारा मंत्र तथा ब्राह्मण भाग दोनों वेद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के प्रमाण तथा परंपरागत प्रसिद्धि के आधार पर भी वेद शब्द मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों भागों का वाचक है। मंत्रों का बहुल भाग पद्यात्मक होने पर भी ब्राह्मण भाग पूर्णतः गद्यात्मक है। अतः छंद शब्द को पद्य का पर्यायवाची मानने पर समस्त वैदिक शब्द राशि में निर्दिष्ट छंदो विधान प्रभावित हो जाता है। गद्य रूप अपौरुषेय शब्द राशि में भी छंदों का विधान होने के कारण अपौरुषेय शब्द राशि में छंदो निर्देश रूढ़ तथा सामान्य लक्षणों के व्यतिरिक्त भी है। केवल वेद में ही नहीं अपितु हम लौकिक संस्कृत साहित्य में भी देखें, दुर्गा सप्तशती आदि पौराणिक मंत्रों में भी लौकिक लक्षणों के अतिरिक्त गायत्री आदि छंदों का निर्देश विनियोग में होता है। अतः वस्तुतः गद्य और पद्य उभय विधात्मक वैदिक पौराणिक आदि आर्ष शब्द राशि में छंद प्रायः रूढ़ माना जाता है। इसके लिए प्राचीन आचार्यों का भी निर्देश है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार विविध अर्थ में प्रयुक्त होने वाला छंद शब्द आवरणार्थक छदि रूर्जने धातु से निष्पन्न होता है। अक्षर संख्या विशिष्टात्मक यजुर्मंत्र भी अपनी नियत अक्षर संख्याओं से आवृत होते हुए मंत्रगत और पदगत अर्थ विशेष के प्रच्छादक होने के कारण छंद शब्द से अभिहित होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में छंद शब्द के निर्वचन के प्रसंग में एक आख्यायिका उपदिष्ट है। किसी काल में देवता मृत्यु से त्रस्त होकर अपनी भय निवृत्ति तथा अपने संरक्षण के लिए छंदों के द्वारा आवृत होकर मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। मूल वचन है, देवा वै मृत्योर विभतः त्रयीं विद्यां प्राविशन् ते छंदोभि अच्छादयन् यदेभि अच्छादयन् तच्छंदसाम छंदस्त्वम्। इसीलिए निरुक्तकार ने छंदाम से छादनात् यह निर्वचन किया है। इस आख्यायिका के आधार पर आंग पूर्वक छद धातु से के अर्थ में छंद शब्द का प्रयोग होता है। अतः मंत्र ब्राह्मण रूप दिग्यजुस्सामात्मक संपूर्ण वेद राशि में छंद व्याप्त हैं, क्योंकि सभी अपौरुषेय वेदवाक्य समूह पाप और तापों से अध्येता को ढक कर, आवृत कर, छिपा कर संरक्षण देते हैं। अतएव निरुक्तकार यास्क मंत्र शब्द के निर्वचन में मंत्रों के मनन से त्रिविध तापों का विनाश होने का वर्णन करते हैं। मंत्राः मननात्।